माँ के पास बैठी है, कहा माँ तुम मेरी माँ हो, प्रसूता हो, तुम जो कहो सो मैं करूँगी, लेकिन एक बात बता, तुम में कोई ऐसी शक्ति है कि विधाता के लिखे अंक को तुम बदल सको? माँ माता पिता यदि विधाता के अंक को बदल सकते हैं तो संसार में कोई माँ बाप अपनी संतान को दुखी नहीं होने देते। एक क्षमता माँ बाप में नहीं, मेरे प्रारब्ध में जो लिखा मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। ये बात छोड़ो, जनी लेहु मातु कलंक करुणा परिहर हूं, अवसर नहीं सुख दुख जो लिखा लीलार, हमारे लीलार में जो सुख दुख विधाता ने लिखा जहां जाऊंगी मुझे पाना है, करुणा छोड़ो। वहां बेटी माँ को समझा रही है, गांव में सब लोग घबराए हुए हैं, शिव और उसके समाज को देखकर नारद को सब आलोचना कर रहे हैं। उसी वक्त नारद और सप्तऋषि गांव में आए और लोगों ने देखा, देखते ही नारद जी को कहा कि महाराज जैसे आए हैं चले जाइए, क्योंकि तुम्हारे प्रताप से हमारी ये दशा हुई। बोले हुआ क्या कि जो श्मशान में रहने चाहिए वो गाँव के बाजार में घूम रहे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, इतने भूत प्रेत आए हैं नगर में, राजभवन में आपका सम्मान नहीं होगा। नारद ने जब सुना कि सम्मान नहीं होगा तो पक्का निर्णय कर लिया कि अब तो राजभवन में जाना ही चाहिए, क्योंकि सम्मान का समाचार मिले तब जाएं और अपमान का समाचार मिले तब वापस लौटे तो संतत्व को दाग लग जाएगा। ऋषियों को साथ लेकर नारद जी आए हिमालय के भवन, अब संत आए ही है तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब का स्वागत भाव शून्य स्वागत। नारद जी बैठे, सबको उदास देखा, नारद जी ने कहा मैना जी मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर नाराज हैं, क्योंकि मैंने आपकी बेटी को सलाह दी थी और वो शिव को पा रही, लेकिन मैना हिमाचल सोचो तुम्हें पता नहीं कि जिसका दो बार अपमान किया गया वो शिव कौन है, और जिसको तुम बेटी बेटी कहते हो ये बेटी वास्तव में क्या है। नारद समाधान करते हैं, स्पष्टता करते हैं, सुनिए ये कौन है, गत जन्म में ये तुम्हारी बेटी दक्ष की बेटी थी, शिव के साथ कथा सुनकर आ रही थी दंडिकारण्य से, रास्ते में राम के दर्शन पर उसको मुख हो गया, संदेह हो गया, सीता का वेश लेकर गई, शिव जी ने उसका त्याग कर दिया, दक्ष के यज्ञ में जल गई और वही बेटी आज अब जन्मी तुम्हारे भवानी पाती। सर्वदा शंकर प्रिया सर्वदा शंकर सिय वेश सती जो मेन देहिय अपराध शंकर परि हरि हर बिरहना बहोरी ऋतु के यज्ञ योगदान अब वही बेटी तुम्हारे घर बेटी बनकर आई है, जन्म जन्म वो शिव की अर्धांगना है, शिव को समझो सती को समझो। नारद जी ने जब पूर्व कथा कही, गत जन्म की बातें बताई, तो पार्वती के प्रति और शिव के प्रति सबके हृदय में एक नूतन भाव प्रकटा, सब लोग पार्वती के चरणों को वंदन करने लगे, शिव के प्रति नया आदर पैदा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे घर में ही शक्ति है और हमारे घर के द्वार पर ही शिव है, लेकिन जब तक कोई संत हमको समझाए ना, जब तक कोई गुरु हमको ठीक से अनुभव न कराए, तब तक अपनी शक्ति और शिव तत्व का परिचय असंभव और अशक्य है। गुरु की जरूरत इसलिए ही है, सब में परमात्मा है, सब में शक्ति पूरी की पूरी भरी, सब घट मेरा साईं कबीर कहते हैं,
खाली घट नहीं को बलिहारी उन घट की जा घट पर घट हो।
तो सब में शक्ति है, सब में क्षमता है, सब में मौलिक तत्व पड़ा हुआ है, सबके द्वार पर शिव तत्व खड़ा है। शर्त ये कि हमें नारद जैसा कोई संत आकर जागृत करे, संत खोले। इसलिए गुरु और संत की जरूरत है। इसलिए कोई गुरु कोई संत के चरणों में रहे।
सत्य की राह सदगुरु जी ने, सत्य की राह बताई सदगुरु जी ने, सत्य की राह।
सुनिए और गाइए।
मोरे मन की सब भ्रांति मिटाई, सदगुरु जी ने सत्य की राह बताई, सदगुरु जी ने सत्य की राह बताई, सदगुरु जी ने सत्य की राह बताई, बाबा जी ने सत्य की राह की, तुलसी जी ने सत्य की राह बताई, तुलसी जी ने सत्य की राह। मारुति ने सत्य की राह बताई, मारुति ने सत्य की राह बताई, बजरंगी ने सत्य की राह बताई,
मतलब सब में शक्ति है, सबके जीवन के द्वार पर शिव खड़े हैं। शर्त कोई गुरु समझाए, कोई संत समझाए। नारद के इस समझावट के बाद सबको शिव के प्रति नूतन आदर और पार्वती के चरणों में सब वंदन करने लगे। अब भोजन की व्यवस्था हुई, चार प्रकार की रसोई परोस दी गई और बारातियों को भोजन करवाया। दूसरा समय निश्चित हुआ। भगवान शंकर दुल्हे के रूप में अब लग्न मंडप के द्वार पर आ रहे हैं। पूरा भूत प्रेत वृंद देवता वृंद साथ में। अब तो पूरे गांव में एक बिलग ही भाव फैल चुका था। गली गली से हिमालय नगर के हिमाचल वासी गली गली से आवाज देकर गा रहे थे। क्या गाते थे, आइए हम भी गाएं। सबके मुख में यही स्वर सुर था, यही शब्द थे।
गौरी तेर प्रीते हो गौरी ते
सब नरनारी कहते थे हे गौरी तेरा भाग्य बड़ा है, हे पार्वती तुम बहुत बड़भागी हो, सब यही गाते थे
गौरी तेरे हो परम भाग शंभु
का बड़ा भाग्य है कि शिव पति के रूप में मिल रहे हैं। पुनः स्वागत हुआ, मंडप में प्रवेश, ब्राह्मणों को वंदन करके देवताओं को आदर देकर भगवान शिव जी सुवर्ण आसन पर विराजित होते हैं। विप्रवृंद ने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया और हिमालय को सूचना दी, आपकी बेटी को मंडप में ले आई है। भवानी को सखियाँ सजा करके दुल्हन के रूप में मंडप में लाती हैं। आप रामचरितमानस को देखेंगे तो पता लगेगा, रामायण में सबके रूप का वर्णन कुछ न कुछ मात्रा में मिलता है, लेकिन दो व्यक्ति के रूप का वर्णन बहुत नहीं मिलता। एक हिमाचल बेटी भवानी और दूसरा जनक पुत्री जानकी, दोनों के रूप का बहुत वर्णन नहीं। जहाँ वर्णन करना बाबा जी ने चाहा और बाबा नहीं रह पाए तो मर्यादा से वर्णन कर दिया, सुंदरता की खानी, सुंदरता की मर्यादा, ऐसे कुछ शब्द लगा दिए। क्यों? कि गोस्वामी जी समझते हैं कि सीता और भवानी माँ हैं और माँ का ये रूप का वर्णन करना पुत्र के लिए मर्यादा का उल्लंघन है। बेटा माँ के रूप का वर्णन करे तो ठीक नहीं लगता, इसलिए जहाँ नहीं रहा गया वहाँ मर्यादा से वर्णन किया। छवि खानी माँ तो भवानी, ऐसा लिखा है, सुंदरता की खानी माँ भवानी मंडप में आई है और मर्यादा से बैठ गई। यहाँ हिमाचल और मैना कन्यादान के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो हाथ में दर्भ के तिनके और अपनी बेटी का हाथ लेकर हिमालय शिव के हाथ में हाथ समर्पित कर रहा है। पार्वती का पानी ग्रहण जब शंकर जी ने किया है, श्रद्धा विश्वास को समर्पित हो गई और ये श्रद्धा हिमालय की श्रद्धा है। हिमालय अटलता का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है। स्थिरता से जिस श्रद्धा का जन्म होता हो, अटलता से जिस श्रद्धा का जन्म होता हो, वो श्रद्धा अंत में शिव को समर्पित हो जाती है। भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, मांग में सिंदूर लगा दिया गया, पार्वती सुहागन हो गई और गणेश जी की पूजा करवाई। मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने तुरंत समाधान कर दिया कि शायद किसी को शंका हो कि माता पिता की शादी हो रही, उसमें गणपति की पूजा कैसे, गणेश तो उसके बेटे हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा सुर अनादि जिय जाने, यहाँ जो गणेश जी की पूजा है वो शंकर पुत्र गणपति नहीं, वेद में जिस गणपति का वर्णन जो आदि अनादि देव के रूप में है तो वो ही गणपति की पूजा। हमारे यहाँ 12 गणपति की व्याख्या है 12, तो यहाँ शंकर पुत्र गणेश जी की पूजा नहीं, आदि रुद्री में जिस गणेश का वर्णन मिला है वही गणेश की पूजा की गई। कोई सुनिसंशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजेउ शंभु भवानी। और 4 मंगल फेरे शुरू हुए, शिव और पार्वती की भावरी, अग्नि ब्राह्मण और वडिलों की उपस्थिति में 4 मंगल फेरे। भारतीय परंपरा तो देखिए हर प्रदेश में बिलग बिलग रिवाज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वैदिक परंपरा का एक सवाल है। हमारे यहाँ किसी की शादी होती है तो हम सब जानते हैं अग्नि के चारों ओर 4 मंगल फेरे दुल्हा दुल्हन को घुमाए जाते हैं। क्या अर्थ है ये 4 मंगल फेरे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष का स्मरण है। आज से हम पति पत्नी को धर्म निभाना है, आज से हम पति पत्नी को संसार चलाने के लिए अर्थ की भी ज़रूरत रहेगी, लेकिन धर्म की मर्यादा में हम अर्थोपार्जन करेंगे, धर्म से विपरीत होकर नहीं। हम संसारी हैं, हमारा वंश वृद्धि हो इसलिए हम काम सुख भी भोगेंगे, तो ये तीसरा फेरा काम का है और अंत में हमारी मुक्ति हो, हम मोक्ष हो, इसलिए मोक्ष का ये 4 फेरा एक केवल घूमना ही मात्र नहीं, पति पत्नी के संकल्प हैं धर्म अर्थ काम। अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा है, अर्थ कमाना धर्म की छाया में और काम भोगना मोक्ष की मर्यादा में, दोनों और 2 किले बनाए हैं धर्म और मोक्ष के बीच में और अर्थ और काम रखा गया ताकि जीवन बिगड़े ना। तो 4 मंगल फेरे पूर्ण होते हैं, लग्न समारंभ संक्षिप्त संपन्न हुआ और दाई जी की सब चीज़ें भगवान शंकर के चरणों में रखकर हिमालय हाथ जोड़कर भगवान शंकर के सामने खड़े रह जाते हैं और गोस्वामी जी ने लिख दिया कि हिमालय क्या बोले, सब रख दिया चरणों में भगवान शंकर जी के सामने रखकर, कहते दाइज दियो बहु भांति, बहुत दाइज दिया, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कर, हाथ जोड़ कर हिमालय खड़े और बोले का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहे, चरणों में गिर पड़े हे पूर्ण काम मैं आपको क्या दूं, समुद्र में एक घड़ा पानी कोई डाले तो क्या दिया, वैसे आप तो कामना से परिपूर्ण। दाई जदियो बहु भांति पुनि कर जोरि हिम भूधर करो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही। भगवान अपने ससुर को संतोष देने लगे। हिमालय ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, महाराज नाथ उमा मम प्राण सम गृह किं करी करे हूँ, ये हमारी पार्वती ये हमारी उमा हमारा प्राण है, आपके घर की किंकरी बनाना उसको, कोई भूल हो गई हो क्षति हो गई हो हमें क्षमा करना। माता पिता की आंख में आंसू आ गए बेटी को समर्पित करते करते, महाराज यदि हमारी बेटी की कोई भूल हो जाए शिव जी तो ये भूल हमारी उमा की नहीं लेकिन संस्कार देने वाले हिमालय और मैना की भूल है, ऐसा समझकर हमारी बेटी को क्षमा कर दे। शिव जी शांत करते हैं, यहाँ विदाई की शहनाई बज चुकी, डोली सजाई गई, पार्वती की विदा की बेला आ गई, सब सखियाँ रोने लगी, कन्या की विदा, माँ बाप के नेत्र में अश्रु छा गए, बेटी सब सखियों को मिल रही हैं, पार्वती पति गृह जा रही है और कन्या विदाई सदैव करुण हुआ करती है, बेटी की विदाई किसको नहीं रुलाती। बाबा जी कहते हैं जब माँ के चरणों में उमा ने वंदन किया तो माँ रोने लगी, बेटी को सीने से लगाकर विधाता को दोष देने लगी मैना। बाबा जी कहते हैं कत विधि नारी सृजे जग माही,
सत विधि ना रिस भी जगमानी पराधीन सपने करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धरन पति देवन दूजा नारी धरन पति देव कत विधि नारी सुधि जगमानी।
विधाता तुमने नारी का सर्जन क्यों किया जिसका संपूर्ण जीवन पराधीनता में ही बीतता है। सही है, जब बेटी होती है कुमारी तो माँ बाप के अधीन, शादी कर दो पति के अधीन, संतानों की माँ बनेगी संतानों के अधीन। नारी का व्यक्तित्व तो संपूर्ण पराधीन रहता है। भारत की नारी का एक विशेष गौरव है। मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ठीक लिखा, नारी जीवन हारे तुम्हारी यही कहानी, नारी जीवन हारे तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हे नारी, तुमने दुनिया को दूध दिया और दुनिया ने तुम्हें आंसू दिया। बेटी, शंकर पद की पूजा करियो। नारी का धर्म है उमा मन वचन कर्म से पति को ही देव मानना। जीवन गंगा की धारा है बेटी, गंगा जैसे कई मोड़ से गुजरती है लेकिन उसकी पवित्रता कभी टूटती नहीं, वैसे जीवन के सुख दुख के कई मोड़ आ जाएं लेकिन जीवन का पवित्र टूटने न पाए, ख्याल करना बेटी। मार हो रही है, मार हो रही है, सखियां मिल रही हैं। और जब पार्वती अपने बाबा को मिलने गई, वृद्ध हिमालय खड़े हैं, पार्वती ने जाकर प्रणाम किया, पिताजी मुझे आशीर्वाद दें। तब हिमालय बालक की तरह रोने लगे। आप गौर करना, एक लौता बेटा हो और उसको सर्पदंश हो जाए और बेटा मर जाए तो पिता के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन संसार में कई पिता ऐसे होते हैं जो पुत्र की मौत पर भी नहीं रो सकते, अपने आप को मजबूत बना लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसा पिता मिलना कठिन है जो बेटी को विदा करता हो तब रोया ना हो। एक प्रसंग ही ऐसा है कि जब बेटी को बाप विदा देता है तब इस देश में कण्व रोए शकुंतला को विदा करते हुए। महाराज जनक जी रोए वैदेही के विदा के वक्त। आज हिमालय जैसी स्थिरता पिघल गई पार्वती की विदाई के समय। बेटी की विदाई हर बाप को बहुत दुखद लगती है। क्यों? ये व्याख्या नहीं है, सबकी अनुभूति होती है। क्योंकि बेटी एक ऐसा पात्र है जो बाप की बहुत देखभाल करती है। बाप देर से घर लौटेगा तो बेटी प्रतीक्षा करेगी, अजी पिताजी नहीं आने, पिताजी ने समय दिया है कि मैं इस समय आऊंगा, बाद में भोजन करूंगा, तो बेटी खाना नहीं खाए, बाबा आ जाएंगे बाद में खाएं। पिता बीमार हो जाएगा तो बेटी दबाकर बला डांट कर उसको दवा पिलाएंगे, पीना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, आराम करना ही चाहिए, दबाव डालेगी माँ। ऐसा दुलार भरा पात्र जब पितृ घर छोड़कर जाता है तब बाप को बड़ा दुख होता है। पिता जो है वो घर के सभी सदस्यों को दुलार करता है, प्यार करता है, सबको संभालता है, किसको कैसे रखे किसको कैसे रखे, पिता सबको दुलार करता है, सबको लाड लड़ाता है, लेकिन बेटी बाप को लाड लड़ाता है। पिता सबकी देखभाल करता है, बेटी बाप की देखभाल करता है। इसलिए कन्या की विदाई पिता के लिए बड़ी कठिन महसूस होती है। उसमें भी आप देखना, कभी कभी ऐसा होता है विधुर बाप हो, माँ मर गई है, बेटी को छोटी सी छोड़कर पिता ने उसको पाल कर बड़ी की, शादी का वक्त आया, बेटी को पति गृह भेज रहा है बाप, तब के दृश्य देखिए कितनी वेदनापूर्ण घटनाएं होती। माँ के बिना बेटी जो है माँ मर चुकी है, ऐसी बिना माँ की बेटी को जब बाप विदाई देता है तब बाप को ऐसा लगता है कि अब मेरी कौन सेवा करेगा। एक थी बेटी जो मेरी माँ बनकर मुझे पाल रही थी, थी तो बेटी लेकिन मुझे लगता था कि मेरी माँ अब जा रही है, और बेटी को भी ऐसा लगता है उस वक्त कि मुझे माँ तो नहीं है, मेरे बाबा की देखभाल कौन करे। दोनों पक्ष बड़े अद्भुत। आप संसार में पाओगे कि बाप और बेटे का संबंध बिगड़ा, ऐसी कई घटनाएं हैं, बाप बेटा कोर्ट में गए, ऐसी भी कई घटनाएं संसार में मिलती हैं। लेकिन ऐसी घटना आपको मिलनी मुश्किल है कि कहीं बाप और बेटी के संबंध बिगड़े हो, कोई भी अपवाद हो पता नहीं, लेकिन बाप और बेटी का संबंध संपूर्ण समर्पण का संबंध, दोनों पक्ष पूर्ण रूपेण निस्वार्थ। 18-20-22 साल की बेटी हो जाए तब तक घर की हर चीज मेरी है, ये मेरे बाबा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा छोटा भाई है, ये घर की चीज सब मेरी, मेरा मेरा करती है, उसको जब जाह कर दो तो सब पराया करके चले जाते, एक अंश भी स्वार्थ नहीं, सब छूट जाता। और बाप इतनी साल तक बेटी को प्यार करता है लेकिन जब विदा देता है तो उसको भी क्या स्वार्थ। इसलिए बेटी की विदाई हमारी संस्कृति में अद्भुत। बाबा के चरणों में पार्वती ने प्रणाम किया तब हिमालय फूट फूट कर रोए, तेरा मार्ग मंगलमय हो, भगवान तुम्हें सुखी बनाए, जाओ बेटी। रोती हुई भवानी चल पड़ी, डोली में बैठ गई है, हिमालय और महीना धीरे धीरे पीछे जा रहे, दूर सुदूर गए, और जब डोली इस पर्वताल पर्वत की गिरिमाला में कहीं कोई पर्वत के नीचे उतर गई और दिखाई देना बंद हो गया तब हिमालय बड़े दुख के साथ वापस लौट गए। और बेटी को विदाई देने के बाद जब पिता घर आता है तब उसकी क्या दशा होती है वाणी का विषय नहीं रहता, वो तो हर पिता ही जाने, वो मंडप सुना, वो घर सुना, वो आंगन सुना। हिमालय घर पर आकर बालक की तरह हुए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है एक बाप को एक बेटी थी, माँ मर चुकी थी और वो बेटी को पालते पालते बाप बुजुर्ग हो गया। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बेटी को कोई बीमारी लग गई और बाप को छोड़कर बेटी मर गई। बाप रोता रहा बेटी के विरह में। एक दिन बाप सो रहा है, पुत्री की याद में नींद आ गई और सपना आया। सपने में देखा कि अपनी बेटी स्वर्ग में है और स्वर्ग में कई लड़कियां उसकी उम्र की हैं और स्वर्ग में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसा सपना आया। टैगोर कहते हैं दीपावली के दीप सब लड़कियों के हाथ में है स्वर्ग में। सपने में देख रहा है ये बाप और सबसे अंत में अपनी बेटी जो मर चुकी थी वो भी स्वर्ग में दिखाई दी, उसके हाथ में भी दीप है और सबके अंत में वो खड़ी है। बाप सपने में अपनी बेटी को देखता है, लेकिन बाप हैरान हो गया कि और सब लड़कियों के हाथ के दीप जल रहे थे और अपनी बेटी जो खड़ी थी उसके हाथ के दीप बुझा हुआ था। बाप से नहीं रहा गया, उसने बेटी को सपने में पूछा, बेटी तेरा दीप बुझा हुआ क्यों? बेटी रोने लगी, बाबा मैंने बार बार दीप जलाया लेकिन बार बार बुझ जाता है, क्यों? बाबा मेरा दोष नहीं, क्या बताऊं, क्या जब जब दीप जलाती हूं लेकिन आप मेरे लिए इतना रोते हो तो आपके आंख के आंसू स्वर्ग में मेरे दीप पर टपक जाते हैं और दीप बार बार बुझ जाते हैं, मैं उसको चेतन नहीं रख पाती। मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अद्भुत है, बड़ा। लोग समाज में कहते हैं ना कि बेटी गरीब पात्र है, लोग कहते हैं ना दिकरी बेटी पुत्री गरीब है, बेटी और गाय को लोग गरीब कहते हैं, लेकिन यदि मैं अपना निज मत कहूँ तो ये कहूँगा कि बेटी गरीब नहीं, जितना बेटी का बाप गरीब होता है, बाप जितना गरीब इतनी बेटी गरीब है। क्योंकि एक बार बेटी को किसी के हाथ में सौंप देने के बाद बाप कितना ही प्रतिष्ठित क्यों हो, क्यों ना हो, लेकिन गरीब बनकर सामने पक्ष के सामने उसको करबद्ध होना पड़ता है बेटी के लिए, बेटी के काम। कितने दृष्टांत दें, मैं तो केवल इतना ही कहूंगा बेटी की विदाई बड़ी कठिन होती है हर बाप को नाती, और बेटी भी जब पति के गृह जाती है तो उसको सबसे ज्यादा चिंता पिता की होती है। घर में छोटा भाई होगा ना तो वो बहन अपने भाई को सीने से लगाकर रोती रोती कहेगी, भैया अब तक तो मैं यहाँ थी इसलिए तुम बापूजी को परेशान करता था तो चलता, लेकिन अब पिता को परेशान मत कर। भाई पिताजी वृद्ध है, उसकी सेवा करना, उसका ख्याल करना। पार्वती पति के साथ कैलाश पहुंचती है, हिमालय के घर आए मेहमानों को विदा दे दी गई, शांत हो गया हिमाचल प्रदेश। और यहाँ बाबा जी कहते हैं कैलाश पर आकर सब देवता प्रणाम करके विदा लेते हैं, दिन बीतने लगे, बाबा जी ने लिख दिया शिव और पार्वती का विहार शुरू हुआ। मानसकार कहते हैं करही विविध विधि भोग विलासा, करही विविध विधि भोग विलासा, गनन समेत बसही कैलासा, गणन समेत बसही कैलासा, तब जन्म I'm
तारक असुर समर जहि मारा जगत मातु तू शंभु भवानी
के माता पिता शिव और भवानी के श्रृंगार का कौन वर्णन कर सके। पवित्र विहार चल रहा है, कुछ काल बीत गया और पार्वती ने पुत्र को जन्म दिया। तब जन्मे उन षट बदन कुमारा कार्तिक का जन्म हुआ, जिस कार्तिक स्वामी ने तारकासुर को मार दिया। श्रद्धा और विश्वास का लग्न हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाद जो पैदा होता है उसका नाम बाबा जी कहते हैं पुरुषार्थ है। और श्रद्धा विश्वास से पैदा होने वाला पुरुषार्थ ही संसार के संशय को और संसार की झूठी धारणाओं को मार सकता है, दूसरे का काम नहीं। तो जगजान षडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा ते ही हेतु में ऋषिकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। बाबा जी कहते हैं कार्तिक स्वामी का ख्याल सबको आ जाए इसलिए मैंने संक्षेप में चरित्र कहा। तारकासुर को मार दिया कार्तिक स्वामी ने और यहाँ बाबा जी शिव चरित्र को विराम देते हैं। संसार में आप देखना कि जिस कुटुंब कोई भी कुटुंब में देखना, जहां पिता पूजा गया तो पुत्र नहीं पूजा गया, कहीं पुत्र पूजा गया तो वहां बाप नहीं पूजा गया। अक्सर आप पाओगे जमा भगवान श्री कृष्ण पूजे गए, उसके पुत्रों की पूजा कहीं दिखाई नहीं देती। राम पूजे गए, लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं देते। या तो कहीं पुत्र पूजे गए तो पिता नहीं पूजे गए। लेकिन एक कुल भारत को मिला विश्व को, शिव कुल, जहां बाप भी पूजा गया और बेटा भी पूजा गया। पिता की पूजा होती है, गणपति की पूजा होती है, पूरा दक्षिण हिंदुस्तान कार्तिकेय की पूजा करता है, पत्नी भी पूजी गई भवानी। शिव परिवार ही ऐसा है जहां सबकी पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है, नाग पूजा होती है, सब की पूजा एक परिवार ही ऐसा। तो बाबा जी कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन बेदन पावहि पार बरने तुलसीदास की अति मत मंद। भगवान शिव जी का चरित्र समुद्र जैसा, वेद भी उसका पार नहीं पा सकता। बाबा जी कहे मैं कैसे वर्णन करूं, अपने आप को तुलसीदास जी मति मंद बताते। अति मति मंद गवान, शिव चरित्र अपार जय कौन पार पाए। गंधर्वराज पुष्प दंताचार्य ने पुकारा महिम न पारंते परम आपके महिमा का पार कौन पा सके। समंदर की शाय बनाई जाए, हर वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, पृथ्वी का कागज बनाया जाए, शेष गणपति यदि लिखें तो भी आपके गुण का कौन। कबीर ने लिखा कि पृथ्वी का कागज करूं, लेखनी करूं बनराई, सात समंदर की शाही करूं, लेकिन हरि गुण लिखो न जाए। तो हमारे सौराष्ट्र के गिरनार के एक महात्मा ने उसका जवाब दिया कि कबीर साहब हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, आपने कहा वो ठीक है कि पृथ्वी का कागज हो जाए, सब वनस्पति मात्र की लेखनी हो जाए और समंदर की शाही बनाई जाए, इतना जुटाया जाए तो भी परमात्मा का गुण लिखना कठिन है, वो मैं कबूल करता हूँ। पृथ्वी के कागज बनाए जाने पर लिखना मुश्किल है, लेकिन यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो शायद लिख भी जाए। जवाब दिया, बोले क्या पृथ्वी का कागज बनाओगे तो नहीं पार पा सकोगे, लेकिन काया का कागज करो, देह को एक अध्याय बना दो, शरीर को एक भागवत का स्कंद बना दो, इस काया को ही रामायण का एक कांड बना दिया जाए, यदि काया का कागज करूं, लेखनी करूं जिभराए, अपनी जीभ को लेखनी बनाओ, मन को मार कर शाही करूं, तो हरि गुण आप लिखा है अपने आप। मन को मार कर, मन को मिटा कर उसकी काली शाही बनाई जाए, क्योंकि मन ही तो काला है, उसकी यदि शाही बनाई जाए तो हरि गुण अपने आप लिख जाते हैं। बाकी तो पृथ्वी का कागज करो, लेखन करो बनराय, सात समंदर शाही करो, हरि गुण लिखो न जाए। हरि गुण लिखना कठिन है। भरद्वाज जी के सामने शिव चरित्र का उपसंहार करते हुए याज्ञवल्क जी ने देखा और कहा कि महाराज आपने मुझे पूछा था राम कथा सुनाइए, लेकिन राम कथा के बदले मैंने आपको शिव चरित्र सुना दिया, तो भरद्वाज जी आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि वक्ता ने विषयांतर कर दिया, लेकिन मैंने जानबूझकर राम कथा कहने से पहले आपको शिव कथा सुनाई, क्यों कि शिव कथा में जब तक रुचि नहीं आती तब तक राम कथा का अधिकार नहीं दिया जाता। शिव है द्वार राम मंदिर का, राम के पास पहुंचना है तो शिव नाम लेना ही पड़ेगा। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, छल के बिना विश्वनाथ शिव जी के चरण में प्रेम करना वो राम भक्त का पक्का लक्षण है। ये तो आजकल लोग जड़ता के मारे मारा मारी कर रहे हैं कि राम कृष्ण को मानने वाला शिव से नफरत करता है, शिव को मानने वाला राम कृष्ण से दूर भागता है। क्या धर्म है लोगों का, आज भी ये चल रहा है समाज। रामकृष्ण को जो मानता है वो शिव नाम तक नहीं लेता, शिव बोलता ही नहीं। दर्जी की दुकान पर जाएगा तो कहेगा हमें कपड़ा घड़ाना है, गुजराती में कहूं तो शिवड़ाऊ हम नहीं बोले, कपड़ू घड़ाऊ छे हम बोले, कारण के शिवड़ाऊ हम बोले तो शिव आवी जाए, शिव आवे तो पाप लागे। मोची की दुकान जैसे तो कैसे हमारा बूट घड़ा हुआ है, बूट शिवड़ा हुआ जब नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, क्यों? शिव शब्द आ जाए। मेरे कहने का तात्पर्य, जो शिव से नफरत करेगा वो राम कृष्ण की भक्ति कैसे पाएगा? और थोड़ा गंभीरता से सोचिए तो दोनों में कहाँ अंतर है। शंकर जी को जो मानते हैं ना वो ललाट में त्रिपुंड करेगा, शिव को मानने वाले त्रिपुंड का आकार धनुष का है, यानी शिव को मानने वाले लोगों ने भगवान राम के सारंग धनुष को अपने भाल में रखकर कहा कि हम राम को कबूल करते हैं, और राम को मानने वाले जो तिलक करते हैं दो सफ़ेद रेखाएं और बीच में लाल श्री, वो तीन रेखाएं भाल में आप देखोगे तो वो त्रिशूल का प्रतीक है। यानी राम को मानने वाला कहता है कि शंकर का त्रिशूल हम अपने भाल में रखते हैं ताकि हम शंकर का स्वीकार करते हैं। राम और शिव दोनों में इतना मिलन है, हम लोग तकरार करते हैं, उसको मानने वाला ये नहीं मानता, उसको मानने वाला ये नहीं मानता, भेद मत देखना, सब एक है। तो प्रथम शिव चरित्र कहकर मैंने आपका मर्म जान लिया। अधिकारी वक्ता, अधिकारी सदगुरु साधक की गति नाप लेता है, बाद में ही मार्गदर्शन देता है। जब तक गति न नापे तब तक मार्गदर्शन देना शायद झूठा साबित हो जाए। हमारे सौराष्ट्र की वार्ता है कि एक किसान अपनी गाय भैंस चरा रहा था खेत में, तो एक युवक दौड़ता हुआ आया और किसान को पूछने लगा, बूढ़ा किसान था, तो पूछा कि बाबा सामने जो गांव है वहां से मुझे दोपहर के 3 बजे की बस में जाना है, तो 2:30 बज चुका है मेरी घड़ी में, तो उस गांव में कितनी मिनटों में पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 3 बजे की बस यदि मैं चुक गया तो मेरा एक बहुत महत्व का काम बिगड़ जाएगा, आप मुझे बताइए मैं कितने मिनटों में पहुंच पाऊंगा। तो उस किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस देखता रहा। दूसरी बार युवक ने पूछा, तीसरी बार पूछा, फिर भी वो चुप रहा। करीब 5 मिनट तक पूछा कि फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, तो युवक ने सोचा कि शायद ये पागल है, उसके सामने बोलने से समय बर्बाद होता है, तो युवक दौड़ने लगा कि चलो दौड़ो। जैसे वो दौड़ा तो तुरंत किसान ने पुकारा, अरे ओ भाई वापस आ, अब बोला। तो युवक वापस आया, कहा क्या है अभी तक नहीं बोले और अब बोले? बोले हाँ तुम वो गांव 5 मिनट में पहुंच जाओगे। बोले इतना ही कहना था तो 5 मिनट पहले क्यों नहीं कहते? बोले तुम दौड़ोगे या धीरे से चलोगे गति देखने के बिना मैं कैसे निर्णय करूं कि कैसे तुम पहुंच पाओ? जब आपकी गति मैंने देख ली तब मैं यकीन कर पाया कि आप इतने मिनटों में गांव पहुंच जाओ। वैसे अधिकारी वक्ता, अधिकारी सदगुरु शिष्य को, साधक को, श्रोता को ठीक से गति देख लेता है, बाद में राम कथा का गांव बताता है, बाद में ही निर्णय। इसलिए प्रथम कहा मैं शिवचरित बूजा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। भरद्वाज जी अब राम के दिव्य सेवक हैं, आप राम के परम उपासक हैं। भरद्वाज जी की आंख में आंसू, कहे बाबा और बात छोड़िए, बस कथा आगे सुनाते जाइए सुनाते। इतने भाव में भरद्वाज जी डूबे हैं और अब कथा राम कथा के प्रति मुड़ी जा रही है। आइए शिव चरित्र के उपसंहार के समय और राम कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सब गाइए हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि प्यारे केशव माधव गोविंद बोल प्यारे केशव माधव गोविंद प्यारे केशव माधव गोविंद बोल प्यारे केशव माधव गोविंद हरि बोल 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 हरे मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे प्यारे मुकुंद माधव गोविंद बोल प्यारे हरि बोल 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 हरि राधे बोल 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 प्यारे मुकुंद माधव राधे राधे बोल प्यारे मुकुंद माधव राधे राधे बोल 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 राधे हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 हरि चरण कुंड माधव हरि हरि बोल चरण कुंड माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधे 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 बोल हरि 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 बोल राधे 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 बोल हरि बोल राधे 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 राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री वृंदावन के इस पावन भाव को हृदयस्थ करते हुए चलिए कथा में आगे बढ़े। भगवान शिव एक बार कैलाश के वट वृक्ष के तले बहुत प्रसन्न वदन बैठे हैं। शिव जी बैठे हैं, पार्वती ने देखा कि मेरे पति देव इतने प्रसन्न मैंने पूर्व कहीं नहीं देखे, आज बहुत प्रसन्न है सरकार। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मृग चर्म बिछा कर बैठे हैं कैसे लगते थे, आइए वर्णन में सुने और गाइए। शब्द में भगवान शंकर का रूप देखे जो बाबा जी करवा थे, बाबा जी ने लिख दिया
धन मुनि चीरा
दिव्य शरीर है, चंद्र सो रहा है। यहाँ एक बात बहुत महत्व की बताई है कि भगवान शंकर जी के हाथ बड़े लंबे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मुनि के वस्त्र भगवान शिव जी ने पहने। पहली बार वर्णन मिला। शादी के लिए गए जब ब्याहने को, तब केवल एक मृगचर्म मर्यादा के खातिर रखा, बाकी दिगंबर रहे। जब समाज के बीच में शिव जी गए तो कपड़े नहीं पहने, और जब एकांत में कैलाश के शिखर पर पत्नी के सिवा और कोई नहीं है, वहां यदि बिल्कुल दिगंबर रहे होते तो भी कोई सवाल नहीं था, लेकिन वहां उसने कपड़े पहने। क्यों? उल्टा क्यों? परिधन मुनि चीरा। दो तीन बातें उससे फलित होती है। एक तो भगवान शंकर ने दुनिया को ये शिक्षा दी कि मैं समाज के बीच में जब गया तब जैसा था वैसा गया, और एकांत में जब बैठा तब मर्यादा से बैठा। इसका मतलब ये हुआ कि समाज के बीच में हम जाए तब हमारा व्यक्तित्व छिपाए ना, जैसे हैं वैसे दंभ ना करें, जो हमारा मौलिक रूप है बस हम ऐसे हैं, और एकांत में मर्यादा का निर्वाह करें। समाज में जैसे हैं वैसे रजुआ, एकांत में जो मर्यादा का निर्वाह करता है वो पूरे संसार में भी संत बन सकता है, और जिसका एकांत बिगड़ जाता है वो हिमालय की कंदरा में भी पूरा संसारी है।